लेकिन जिस वक्त वो दो ओहदे मिले, इन्होंने कहीं भी किसी भी तारीख या कुरान के किसी भी आयत में ऐसा जिक्र नहीं आया कि इन्होंने कहा काला मिन ज़ुर्रियती। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा हाथ जोड़ के, या नबी अल्लाह, क्या वजह थी कि जब आपको ओहदे नबुवत मिला तब आपने अपनी ज़ुर्रियत का ख्याल ना आया, जब आपको ओहदे खुल्लत मिला तब आपको अपनी ज़ुर्रियत का ख्याल ना आया? तो शायद एक मरतबा जनाब इब्राहिम का नादान, तुझे नहीं मालूम है ओहदे नबुवत एक दिन खत्म हो जाने वाला है, ओहदे खिलाफत एक दिन खत्म हो जाने वाला है, लेकिन ये ओहदे इमामत ऐसा है जो ता कयाम कयामत बाकी रहेगा। और जनाब इब्राहिम को जो ओहदा मिला किस तरीके से मिला, ये दुनिया का भी दस्तूर है, इलाही दस्तूर है। जब किसी को किसी मनसब से नवाजा जाता है तो उसका एग्जाम लिया जाता है, उसका इम्तिहान लिया जाता है, उसको जांचा जाता है, उसको परखा जाता है। परवरदिगार आलम ने भी जनाब इब्राहिम की जिंदगी में तीन इम्तिहान लिए हैं, और वो तीन अहम इम्तिहान हैं जिसमें जिन इम्तिहानों से जनाब इब्राहिम निकल कर आए हैं, अपने इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। वो कौन से इम्तिहान है? जनाब इब्राहिम का पहला इम्तिहान जो होता है जनाब इब्राहिम के माल के जरिए होता है। वो क्या है इम्तिहान? जनाब इब्राहिम है अपने गल्ले के साथ, अपनी भेड़ों के साथ, अपनी बकरियों के साथ एक बियाबान में है, बैठे हैं, उनके जानवर चर रहे हैं, यगा एक उनके कानों में आवाज आती है कि कोई जो है कह रहा है सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इस जिक्र का जनाब इब्राहिम के कानों में पढ़ना था جناب ابراہیم اگر تمام متوجہ ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے. عزیزو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ایک اللہ کے بندے کو اگر اپنے اللہ سے محبت ہوگی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی طرف اس کا ذکر ہو اور بندہ اس سے متوجہ نہ ہو. یہ تمام واقعات تمام قرآنی قصے جو ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے درس عبرت ہے. یہ آواز پہنچی جناب ابراہیم نے دیکھا کہ اسے کچھ دور پہ ایک نوجوان ایک حسین ایک خوبصورت شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے. وہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہہ رہا ہے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. ایک مرتبہ جناب ابراہیم اس کے پاس جاتے ہیں, اس سے ادب احترام سے پوچھتے ہیں بھائی کیا تو میرے پروردگار کا ذکر کر رہا ہے؟ اس نے جناب ابراہیم کی طرف دیکھا کہا بے شک میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, میں تمہارے پروردگار کا ذکر کر رہا ہوں. جناب ابراہیم کہتے ہیں بھائی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس ذکر کو ایک مرتبہ اور دہرا دو اور اس کے بدلے میں میرا آدھا گلہ لے لو. تو عزیزو اگر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں اس کا مال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے ذکر کے لیے آدھا گلہ جناب ابراہیم دینے کو تیار ہے. اس نے ایک مرتبہ اس ذکر کو دہرایا, جناب ابراہیم کی تشنگی ابھی ختم نہ ہوئی. ایک مرتبہ پھر اس کے پاس جاتے ہیں بھائی اللہ کی محبت میرے دل میں جوش مار رہی ہے, ابھی میری تشنگی ختم نہیں ہوئی ہے, کیا ہو سکتا ہے ایک مرتبہ تم اس ذکر کو اور دہرا دو تاکہ یہ پورا گلہ تمہارے حوالے کر دوں. ایک مرتبہ پھر اس نے اس ذکر کو دہرایا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. اس ذکر کو دہرایا, جناب ابراہیم کہتے ہیں بھائی ہم وعدے کو وفا کرنے والے ہیں, یہ پورا گلہ تمہارے حوالے ہے, لیکن یقیناً اتنے بڑے گلے کو چلانے والے کے لیے تمہیں ایک شخص کی ضرورت ہوگی, ایک گلے بان کی, ایک گلیریے کی تمہیں ضرورت ہوگی. اور اگر تم ایک مرتبہ اللہ کے اس ذکر کو دوبارہ دہرا دو تو تم اپنے آپ کو تمہاری غلامی میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. جناب ابراہیم نے کہا, اس نے ایک مرتبہ پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ اس کا کہنا تھا. جناب ابراہیم اس کے بغل میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہم وعدے کو وفا کرنے والے ہیں, ہم ہمارے یہاں بے وفائی نہیں سکھائی جاتی ہے, اللہ نے ہمیں اس بات پہ مامور کیا ہے کہ ہم آ کے لوگوں کی اصلاح کریں, لہٰذا ہمارا جسم ہماری جان ہماری زندگی تمہارے حوالے ہیں. ایک مرتبہ آنے والے شخص نے جناب ابراہیم کو سر سے پیر تک دیکھا, کہا ابراہیم کیسی غلامی کیسی بھیڑ بکریاں کیسی تمہاری زندگی, اللہ نے مجھے اس بات پر مامور کر کے بھیجا تھا کہ میں تمہارا امتحان لوں, اور تمہارا امتحان ہوا, تو اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ نے تمہیں عہدہ امامت سے نوازا. محمد جناب ابراہیم کا پہلا امتحان ہے جو مال کے ذریعے سے جناب ابراہیم کا ہوا, اور جناب ابراہیم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اس امتحان میں اپنی کامیابی اللہ کے سامنے دکھائی اور اپنی محبت کو اللہ کے لیے ثابت کر کے دکھایا. تو عزیزوں یقیناً اگر کوئی جو شخص ابراہیم پہ یا آل ابراہیم یعنی ابراہیم کے وارث امام حسین علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہے, ان کے چاہنے والوں سے میں سے ہے اور ان کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے, تو ایسا ممکن نہیں کہ اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آئے اس کو پکارا جائے اور وہ نماز سے غافل ہو. عزیزوں یہ درس ہے ہماری زندگی کے لیے. یہ پہلا امتحان جناب ابراہیم کا, دوسرا امتحان کس طریقے سے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جان کے ذریعے سے. وہ مشہور واقعہ کہ جناب ابراہیم کو بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا, کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اللہ کے نبی, اور بادشاہ خود خدائی کا وعدہ کر رہا. لکڑیاں جمع کی گئیں, آگ جلائی گئی, اور آگ بھی کیسی آگ کی روایتوں کے مطابق کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا ہے تو وہ بھی جل کے گر جاتا. جناب ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا, آگ کے حوالے کیا گیا. ادھر جناب ابراہیم منجنیق اور آگ کے درمیان ہے, ادھر صفے ملائکہ میں تلاطم ہے. اے پروردگار یہ کیسا انصاف, تیرا روح زمین پر ایک ہی ذکر کرنے والا تیرا نبی وہ بھی آگ میں جا رہا ہے. پروردگار فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا اگر مدد کی حاجت رکھتے ہو تو جاؤ, اگر ابراہیم مدد چاہے تو مدد کر دو, مجھے کوئی حرج نہیں ہے, میری طرف سے اجازت ہے. ادھر سے ملک چلتا ہے, جناب جبرائیل آتے ہیں, کہتے ہیں یا خلیل बाद दुरूद सलाम अल्लाह की तरफ से मुझे भेजा गया है कि अगर आपको मदद की जरूरत है तो मैं मदद के लिए हाजिर हूँ। अजीजों यहाँ पे अगर जनाब इब्राहिम इस बात को कह दे कि मदद तुमसे चाहिए तो ये भी गलत है, क्योंकि अल्लाह के होते हुए एक बंदा गैर से मदद मांगे, और अगर ये कह दे मदद नहीं चाहिए तो ये भी गलत, क्योंकि बंदा बेनियाज नहीं है, बंदे को मदद की जरूरत है। अजीजों जनाब इब्राहिम ने एक फसीह बलीग जुमला इरशाद फरमाया, हाजत है लेकिन तुमसे नहीं। अजीजों परवरदिगार को ये जुमला इतना पसंद आया कि अगर मेरा बंदा मुझसे हाजत रखता है तो या ना रखूनी बर्दम सलाम अला इब्राहिम की छींटे मारकर आग को गुलजार कर दिया। जनाब इब्राहिम जाते हैं आग में, उसके बाद जब दुश्मन कुछ देर आग ठंडी होने के बाद करीब जाते हैं, इसलिए कि देखा जाए इब्राहिम तो जल के हो गए होंगे, जब करीब जाते हैं तो क्या देखते हैं आग गुलजार हो गई है और जनाब इब्राहिम परवरदिगार के जिक्र में मशगूल है। सलावत पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद,
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।
जनाब इब्राहिम का तीसरा और आखिरी इम्तिहान वो क्या है, औलाद के जरिए। अजीजों इस इम्तिहान में अच्छे अच्छे पीछे हट जाते हैं, माल चली जाए, जान चली जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन औलाद बच जाए, इसकी कदर वही जानता है जो इन मुश्किलात से दोचार हुआ। अल्लाह इस गम के सदके में हम सब के औलादों को सलामत रखे। लेकिन जनाब इब्राहिम का इम्तिहान क्या होता है, जनाब इब्राहिम ख्वाब देखते हैं कि मैं अपने बेटे इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। एक शब्द ख्वाब देखा, दो शब्द देखा, जब मुतवातिर तीन शब्द ख्वाब देखा उसके बाद अपने बेटे से बयान करते हैं, बेटा इस्माइल मैंने ख्वाब देखा है। अजीजों बेटा भी खुद अल्लाह के मनसब का हामिल है। जनाब इस्माइल कहते हैं बाबा ये ख्वाब नहीं है बल्कि आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म है, आप इसको अंजाम दे, इंशाअल्लाह आप मुसाबिरीन में से पाएंगे। जनाब इब्राहिम वाकये के मुताबिक लेके आते हैं मीना के मैदान में, जनाब इस्माइल को लेटाते हैं, जनाब इस्माइल कहते हैं बाबा आप अपने आंखों को पट्टी बांध लीजिए, शायद मोहब्बत पेदरी माँ में आ जाए और आपका हाथ छुरी से हट जाए। जनाब इब्राहिम ने आंखों पर पट्टी बांध दी, जनाब इस्माइल को लेटाया, छुरी चलाया, छुरी चली, खून हाथों पे आया। जनाब इब्राहिम ये समझे कि बेटा जिवा हो गया, कुर्बानी कबूल हो गई, एक मरतबा आंखों से पट्टी हटाया तो क्या देखा कि दुम्बा जिवा हो गया, इस्माइल बगल में बैठे हुए। एक मरतबा फिर लेटाना चाहते हैं, उधर से हुक्म आता है इब्राहिम हमने तुम्हारी नियत का इम्तिहान लिया है, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई लेकिन हमें इसे ज़िब्बे अज़ीम में तब्दील कर दिया। अजीजों यहाँ से एक नतीजा निकलता है, अगर जनाब इब्राहिम के इम्तिहानों का जायजा लिया जाए और वारिस इब्राहिम हजरत अबा अब्दुल्लाह हुसैन की जिंदगी का जायजा लिया जाए, जैसा कि हम ज़ियारत वारसा में पढ़ते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब इब्राहिम के वारिस हैं। अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहिम खलीलुल्लाह। तो अजीजों अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के वारिस हैं तो वो सिफतें जो तमाम अंबिया में थी वो इमाम हुसैन के अंदर भी होना चाहिए। और बस इसी नतीजे की तरफ आपको ले चल रहा हूँ और उसके बाद मसाइब और खत्म दुआ। अगर हम जनाब इब्राहिम की इन तीनों इम्तिहानों में देखें तो एक चीज हमारे समझ में आती है कि जनाब इब्राहिम के आप पहले इम्तिहान में देखे या दूसरे इम्तिहान में देखे या तीसरे इम्तिहान में, पहले इम्तिहान में जब वाकया बयान होता है, वाकया को कुरान बयान करता है, तारीख बयान करती है, तो ऐसा लगता है आखिर तक कि गल्ला चला जाएगा, इब्राहिम गुलामी में चले जाएंगे, लेकिन आखिर वक्त मलक ने बशारत दी कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। दूसरे इम्तिहान में आखिर तक सबको ये समझ में आ रहा है कि इब्राहिम जल के राख हो जाएंगे लेकिन आखिर में बच गए। तीसरे इम्तिहान में ऐसा है खुद जनाब इब्राहिम को लगा कि इस्माइल ज़िबा हो गए लेकिन बच गए। तो अजीजों इसको एक मिसाल के जरिए से आपके सामने पेश करता हूं, शायद मेरा मफहूम आपके अजहान तक इस मिसाल के जरिए पहुंच जाए। हमारे घर में ये सबके घर में बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा होता है, बाप जब बाहर से आता है तो कुछ चीजें खरीद के लाता है बच्चे के लिए, कुछ चीज लेके आता है उसकी अच्छी आदत डालने के लिए कि बच्चा दूसरों को दे के खाए, उसके हाथ से लेता है अपनी तरफ बढ़ाता है लेकिन निगाह बच्चे के चेहरे की तरफ रहती है। अजीजों कि बच्चे के चेहरे के हाव भाव क्या है, बच्चा ऐसा तो नहीं है कि उसको कहीं ये हो रहा है कि ले लेगा बाप खा लेगा, लेकिन जब बच्चे को कुछ दूर तक लेके आए उसके बाद उससे कहते हैं बेटा अच्छा खा लो, उसकी अच्छी आदत डाल लेगी, बच्चे ने दे दिया। अजीजों लेकिन जब यही बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, पढ़ लिख कर किसी अच्छी नौकरी पे फायज होता है और जब वहां से अपने बाप के लिए कोई अच्छा तोहफा लेके आता है तो बच्चा वही है, बच्चे में कोई फर्क नहीं हुआ है। लेकिन सिन्नो साल इस बात पर इंतजार कर रहे हैं, बच्चे ने अपनी कमाई से बाप के लिए तोहफा लेके आया है तो बाप भी उसको गले से लगाता है और उसके बाद उस चीज को कबूल करता है। अजीजों बस यही फर्क था जनाब इब्राहिम की जिंदगी में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, कि जनाब इब्राहिम की जिंदगी को अगर हम देखें तो ये अब्दियत का बचपना था। परवरदिगार यहाँ पे जनाब इब्राहिम के इम्तिहान को देख रहा था, आखिर तक देखने के बाद सारी चीजें वापस हो गई लेकिन कुर्बानी भी कबूल हुई। लेकिन हुसैन इब्ने अली का जमाना ये अब्दियत की जवानी है कि एक के बाद एक कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर्बला के मैदान में पेश कर रहे हैं और एक के बाद एक कुर्बानी कबूल हो रही है। वो चाहे कुर्बानी अंसार व अहिब्बा की सूरत में हो, चाहे वो कुर्बानी हुर की सूरत में हो, या मुस्लिम इब्ने औसदा की सूरत में हो, या ज़ुहैर व सईद की सूरत में हो, या वो कुर्बानी कासिम अली अकबर की सूरत में हो। अज़ीज़ो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें क्या बताया, दर्स जिंदगी दिया है। कर्बला क्या है, क्या हम सिर्फ इसलिए है कि हम आकर यहाँ बैठे चार आंसू बहाएं और चले जाएं? अज़ीज़ो नहीं, करबला इस बात की दावत देती है कि हम इस बात पे फिक्र करें कि आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबक का मकसद क्या था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा इकदाम क्यों किया, अपने अहिब्बा अपने बच्चों की अपने खानदान की कुर्बानी क्यों दी, किस लिए दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त मदीने से निकले हैं तो यही कहा था कि मेरे इस सफर का मकसद जंग व जिदाल नहीं है, हुकूमत तलबी नहीं है, जाह तलबी नहीं है, बल्कि मेरी इस सफर का मकसद सिर्फ और सिर्फ हलाल मोहम्मदी को हराम होने से बचाना है। नाना की जद की उम्मत की नाना की उम्मत की इस्लाह के खातिर निकला हूं। तो अजीजों क्या उन बातों पर आज हम गौर करते हैं, क्या जरूरत है इस बात की कि मुहर्रम आए हम निकले बाहर तो एक दूसरा इंसान देख के इस बात को समझे कि हकीकी मानों में हुसैन का चाहने वाला। आज जरूरत है कि हम अपने अंदर वो चीजें पैदा करें जो एक हकीकी आजादार के अंदर होना चाहिए। तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में वारिद हो चुके हैं वो तारीखें हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सख्त मुसीबतों के दिन हैं, एक के बाद एक कुर्बानियां जा रही हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो उधर से आवाज आती जाते हैं और जनाजे को लेकर आते हैं। अजीजों आज 8 मुहर्रम अय्याम अज़ा अशरा मुहर्रम हमसे रुखसत हो रहा, हमारा इमाम हमसे रुखसत हो रहा। वो दिन करीब है कि जहरा का लाल करबला के मैदान में एक तो तनहा शहीद कर दिया जाएगा और हुसैन की माँ फरियाद करती रहेगी। अजीजों गरज के दिन गुजरते हैं, 8 मुहर्रम का दिन गुजरता है, 9 गुजरती है, शुभ आसूर नमोदार होती है तो शुभ आसूर की शुरुआत कैसे होती है, अजान अली अकबर से होती है। और उधर से दुश्मन जंग के लिए तैयार है, एक के बाद एक कुर्बानी जा रही है। अजीजों कभी कासिम जाते हैं कभी ओनो मोहम्मद जाते हैं। अजीजों लेकिन जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ये कौन है, शख्सियत क्या है? जनाब अब्बास को मौलाए कायनात ने किस लिए तलब किया था, किस लिए दुआ की थी? अगर आप उस मंजर को देखें जिस वक्त मौलाए कायनात जिस तरह अलालत पर है वसीयत कर रहे हैं, एक एक को हाथ पकड़ कर इमाम हसन के हवाले कर रहे हैं, लेकिन एक शहजादा है जो घर के गोशे में बैठा हुआ है, सर को जानों में निभाए हुए और गिरिया कर रहा है। एक मरतबा मादर अब्बास जनाब उम्मुल बनीन आती है हजरत अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, ऐ मेरे सैयदो आका ऐ मेरे वारिस, क्या मेरे फर्जंद ने कोई गलती कर दी है जो आपने सबको तो आका हुसैन के आका हसन के हवाले किया लेकिन मेरे बच्चे को किसी के हवाले न किया। एक मरतबा हजरत अली ने जनाब अब्बास को बुलाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया, जनाब अब्बास का हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में देते हैं, कहते हैं बेटा हुसैन या अब्बास तुम्हारे हवाले है, अब्बास हुसैन से खबरदार रहना, हुसैन के ऊपर कोई आश ना आने पाए। अजीजों ये कौन सा वक्त है, जनाब अब्बास टहल रहे हैं, बच्चों की प्यासे अलतश अलतश खाए प्यास की सदा जनाब अब्बास के कानों में टकरा रहे हैं। जनाब सकीना हाय प्यास कह रहे हैं, लेकिन जनाब अब्बास आते हैं तो इजाज़त नहीं मिलती। इमाम हुसैन कहते हैं, भैया तुम तो मेरे लश्कर के आलमदार, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ। अजीज़ बड़ा सख्त मंजर है, बहुत सख्त मरहला है जनाब अब्बास के लिए। एक मरतबा कहते हैं, मौला जब वो लश्कर ही न रहा तो मैं किस लश्कर की अलमदारी करूँ, जहाँ वो लश्कर है मैं वहीं जाना चाहता हूँ। अब दुश्मनों के ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। अजीज़ों जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिलती है। हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर जाना ही चाहते हो तो इन बच्चों की आवाज़ सुन रहे हो, बच्चों के लिए कुछ सबील आप कर दो। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम अलम को लेते हैं, मशकीज़ा आता है, जनाब सकीना सर के मशकीज़े को अलम में बांधते हैं, उसके बाद चलते हैं। अजीज़ों जनाब अब्बास जानना ही चाहते हैं कि मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अब्बास को रोकते हैं, अलम को नीचे झुकाते हैं, कुछ चीज़ को काटते हैं, कुछ चीज़ को लिखते हैं। ये माजरा ये सहना जनाब ज़ैनब दर खैमा पर खड़ी हुई देख रही है। एक मरतबा पूछती, भैया कि आपने क्या किया। इमाम हुसैन कहते हैं, ज़ैनब अगर सुनना चाहती हो सुनो, परचम पर लिखा था नसरु मिनल्लाह व फतहु करीब, मैंने काट के इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा। एक मरतबा जनाब ज़ैनब समझ गई कि अब तक जो गया है वो वापस नहीं आया है, अब्बास का भी बस आखिरी वक्त है। जनाब ज़ैनब कहती हैं, भैया तुम जा तो रहे हो, लेकिन आज से वो आँखें जो तुम्हारे खौफ से जागा करती थी वो इत्मीनान से सोएंगी, लेकिन आज से वो आँखें जो तुम्हारे वजह से सोया करती थी वो जागेंगी। अजीज़ों जनाब ज़ैनब ने एक मरसिया पढ़ा, ऐ अब्बास जिस वक़्त बचपने में बाबा कहा करते थे कि इन हाथों में रसन बंधेगी, तो मुझे यकीन नहीं आता था कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके उसके किस में हिम्मत है उसकी बहन के हाथों में रसन बांधे, लेकिन अब यकीन आ गया। अब्बास जाते हो तो जाओ, जनाब अब्बास चलते हैं, मैदान की तरफ आते हैं। वो जंग की रवायतों के मुताबिक जब 70 सर ऊपर चले जाते थे तब पहला ऊपर से गिरता था, और हाथों में सिर्फ एक नैज़ा है जिसके जरिए जनाब अब्बास जंग कर रहे हैं। अजीज़ों लेकिन वही बनी उमैया का वही खेल कि जब एक से के मुकाबले एक जब न पा पाया तो वही की चारों तरफ से घेर लो। दुश्मन ने कमी गाह से दाहिना बाजू कलम किया, जनाब अब्बास ने हाथों अलम को दूसरे हाथ में लिया, मश को दांतों में दबाया, दूसरा हाथ भी कलम हुआ। अब ये है कि सीने से चपटा लिया अलम। अजीज़ों ये अलमबरदारी क्या है, जनाब अब्बास अलमबरदार हैं। और अरब के ज़माने में भी अलम ही होता था जो जीत और नाकामी की निशानदेही करता था। जनाब अब्बास हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं, कि दिल में इरादा है इस पानी को हुसैन के बच्चों तक पहुंचा दें ताकि सकीना की प्यास बुझ जाए। लेकिन जालिम ने एक मरतबा देखा कि अब्बास के दिल में जो तमन्ना है, जब तक मश्क में पानी रहेगा तब तक अब्बास को कोई टस से मस नहीं कर सकता है। एक तीर चला जो मश्क को छेदता हुआ अब्बास के सीने को चीरता हुआ निकल गया। अजीज़ों जनाब अब्बास ने अपने घोड़े का रुख मोड़ दिया और अब जाने का इरादा छोड़ दिया। इसी असना में एक गुर्ज़ आहनी जनाब अब्बास के सर पे पड़ता है कि ये गाजी त्योरा के अब जमीन पे आता है और आवाज़ देता है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों में यह आवाज़ टकराई, एक मरतबा अपनी कमर को पकड़ लिया, अलान इनकसर अज़हरी या अकी, ऐ भैया तुम्हारे बाद मेरी कमर शिकस्ता हो गई। अजीज़ो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जनाब अब्बास की आवाज़ से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दूर बढ़े, एक हाथ को उठाया, कुछ दूर उसके आवाज़ आगे बढ़ते हैं, दूसरे हाथ को लेते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अब्बास के सराहाने पहुँचते हैं। एक मरतबा देखा क्या कि गाजी ज़मीन पर पड़ा हुआ है, सर को उठाया, अपने जानू पर रखा, अरे भैया अगर कोई वसीयत हो तो फरमाओ। इमाम जनाब अब्बास कहते हैं, मौला एक आखिरी तमन्ना थी, जिस वक्त मैं दुनिया में आया था उस वक्त भी मैंने आपकी ज़्यारत की थी, अब दुनिया से जाना चाह रहा हूँ तो आपकी भी ज़्यारत करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, भैया क्या चीज़ माने हैं। जनाब अब्बास कहते हैं, मौला एक आँख में तीर बेवस्त है, एक आँख में खून है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तीर को निकालते हैं, खून को साफ करते हैं, جناب عباس علیہ السلام زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اور وصیت کرتے ہیں، اے مولا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کیونکہ عباس سکینہ سے بہت شرمندہ ہے، سکینہ سے بہت شرمندہ ہے۔ اس کے بعد یہ وصیتیں ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اے بھیا اس بھائی کی بھی آخری خواہش ہے، تم نے زندگی بھر اس بھائی کو کبھی بھائی نہ کہا، ہمیشہ آقا کہا، لیکن آخری وقت اس حسین کی تمنا ہے کہ ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو۔ جناب عباس نے بھائی کہا، من کا ڈھلا، جناب عباس اس دنیا سے گزر گئے، اور امام حسین علیہ السلام ہیں جناب عباس کے علم کو لے کے ایک مرتبہ ترائی سے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، عزیز و علم بلند ہوا، ایک مرتبہ ادھر ایک بچی ہے، ایک چار سال کی بچی ہے ادھر خیمہ میں اپنے چچا کے انتظار میں کھڑی ہے، علم کا بلند ہونا تھا، جناب سکینہ نے کہا، بچوں کو جمع کیا، اے بچوں آؤ دیکھو علم بلند ہوا، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزا لیے ہوئے، ایک مرتبہ جب علم قریب آیا تو سکینہ نے کیا دیکھا، علم تو آیا ہے لیکن علمدار نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ سن